नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान और उनके 7 अधिकारियों का एक समूह ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। जापान के कोब में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं के 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान जारी है। आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल मिलाकर लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया है। लद्दाख में 52% से अधिक, पश्चिम बंगाल में 48% से अधिक, उत्तर प्रदेश में 39% से अधिक तथा झारखंड में लगभग 42% मतदान की खबर है। बिहार तथा जम्मू कश्मीर में लगभग 35%, ओडिशा में 35% से अधिक, महाराष्ट्र में लगभग 28% मतदान दर्ज किया गया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में 35% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा तथा बिहार की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। आज ही झारखंड की गौंडे सीट और उत्तर प्रदेश की लखनऊ पूर्व सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर खबर दी है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। महिलाओं और युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा उनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी तथा पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा KL शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। सुचारू और पारदर्शी मतदान के लिए 94,732 मतदान केंद्रों पर 9,47,000 से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सभी प्रबंध किए हैं। वृद्ध और दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। शेड, पेयजल, रैम्प, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली जैसे सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य प्रशासन से कहा गया है कि वो गर्मी को देखते हुए पर्याप्त प्रबंध करें। अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 379 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 67% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने ओडिशा के अंगुल और कटक में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि कटक भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है और ये आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। उन्होंने वायदा किया कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2,200 रूपये से बढ़ाकर 3,100 रूपये कर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि ओडिशा प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद गरीबी से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजू जनता दल के शासन में ओडिशा के खनिज और संस्कृति सुरक्षित नहीं है। श्री मोदी ने नवीन पटनायक सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अपने पिछले 24 वर्ष के शासन में किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की कि वे ओडिशा में सरकार बदलने के लिए मतदान करें ताकि राज्य समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सके। श्री मोदी ने आज सवेरे पुरी में 2 किलोमीटर लंबे रोड शो का नेतृत्व किया। वे आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम और तामलुक में भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक का मेगा रोड शो और जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज हरियाणा के करनाल में रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के ढुमरियागंज में जनसभा को संबोधित किया। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय दंड संहिता आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल ही में बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों का खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाले अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से कहा कि यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इस अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि याचिका बहुत ही अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से दायर की गई है। आखिर में याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। जनहित याचिका में कहा गया था कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई खामियां और विसंगत दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोवैक्सीन के प्रभावों पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शोध पत्र गुमराह करने वाला है और इसमें परिषद का भी गलत तरीके से हवाला दिया गया है। ICMR ने कहा है कि वो किसी भी तरह से इस अध्ययन में शामिल नहीं थी और न ही उसने इस शोध के लिए किसी तरह की वित्तीय या तकनीकी सहायता दी है। ICMR के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने शोध पत्र के लेखकों और पत्रिका के संपादक को पत्र लिखकर कहा है कि ICMR के उल्लेख को तुरंत हटाया जाए। श्री बहल ने इस अध्ययन की प्रक्रिया और संरचना पर भी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस शोध में जो भी घटनाएं बताई गई हैं उनको कोविड-19 टीकाकरण से नहीं जोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। अब तक 6,40,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 2,81,713 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ की यात्रा की है और 1,20,000 से अधिक भक्तों ने बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम में अब तक 1,25,608 और गंगोत्री धाम में 1,12,508 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आज भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की है। इस बीच जिले के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने गंगोत्री धाम का निरीक्षण कर अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर वन वे व गेट सिस्टम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों से फीडबैक भी लिया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी पूर्वी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहेगी। कल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भीषण गर्मी महसूस की गई। दिल्ली के नजफगढ़ में 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो पूरे देश में सबसे अधिक था। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकतर इलाकों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून मालदीव के कुछ हिस्सों और कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और दक्षिण अंडमान महासागर में पहुंच गया है। बुधवार तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान और उनके साथ अधिकारियों का एक समूह ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। समाचार एजेंसी ईरना ने ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और घटनास्थल पर किसी के जीवित होने का कोई संकेत नहीं है। हेलीकॉप्टर ने कल दोपहर देश के उत्तरी हिस्से में घने कोहरे से हो रही कठिनाइयों के बाद हार्ड लैंडिंग की थी। उस समय राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान की यात्रा के बाद वापस ईरान लौट रहे थे। रईसी 2021 से ईरान के राष्ट्रपति पद पर थे। इस घटना के और ब्यौरे का इंतजार है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।